जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज जो है पिछली बारी दिन 29 पर लंबा प्रयास कर लिया था, अब 30 से लेके 37 तक आज जो है प्रयास करेंगे चर्चा करने का, और इसके साइकिल प्रो का विशेष रूप से आशीर्वाद लेने का जो है करके। तो ये जो अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तस्यादेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरविषये नमः। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाना चाहते हैं और अपने जो है चार मुख्य पार्षद से ये चर्चा करते हैं कि आप मुझे ये भिक्षा दो कि मेरे को दक्षिण भारत जाने की अनुमति जो आप दीजिए, ताकि मैं अपने भाई विश्वरूप को जिन्होंने संन्यास ले लिया था उनको खोज सकूं। हालांकि महाप्रभु को मालूम था कि विश्वरूप जो है देह त्याग कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए था, नहीं तो उनके पास उनको छोड़ते नहीं थे। तो वे नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद और जो है और एक और भक्त उनको बुला करके जो है बोला कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी आज्ञा दीजिए। और दामोदर पंडित, तो ये चार भक्त है, मुकुंद, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित, नित्यानंद प्रभु। ऐसा चैतन्य देव ने सारे भक्तों को बुलाकर कहा, लेकिन ये चार का मुख्य वर्णन आएगा। और फिर हमने भक्ति आश्रय राष्ट्र महाराज से सुना था इन चारों भक्तों के दिव्य प्रेममय संबंध हो चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु लोगों को बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अकेले जाओ, सन्यासी का तो बाद में वैसे अकेले ट्रैवल करना। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अकेले जाओ, तो हम में से कोई आपके साथ चल सकता है। तो ऐसा और नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने पहले भी सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी, तो जो है मुझे सारे रास्ते वगैरह सब मालूम है, तो आप कृपा करके मेरे को साथ दे दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो पिछली बार संन्यास लेने के बाद मैं जब वृंदावन जा रहा था आपने मेरा रास्ता भटका के मुझे शांतिपुर भेज दिया, उसके बाद जगन्नाथपुरी आपको साथ में लेके आज रास्ते में जंगल जोड़ दिया, अभी दक्षिण भारत जाऊंगा तो और जाने क्या क्या करोगे मुझे तो मालूम नहीं है कि नहीं। और फिर तो वो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के प्रेम को महाप्रभु ऐसे प्रेजेंट करते हैं एक शिकायत के रूप में, कुल्हाने के रूप के अंदर, चैतन्य महाप्रभु जो है कि जैसे नित्यानंद प्रभु ने बहुत गलत कार्य किया है ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही फिर वो जगन्नाथ पंडित के बारे में बोलेंगे, बोलते हैं कि देखो जगन्नाथ पंडित जो है ये चाहता है कि मैंने तो संन्यास धर्म ग्रहण किया है और अब मैं तपस्या करता हूँ, जो है कड़क फर्श पे सोता हूँ, फिर मैं तीन बार स्नान इत्यादि करता हूँ, तो जो है और जाड़े में भी तीन बार स्नान करता हूँ, लेकिन जो जगन पंडित है वो चाहते हैं कि मैं शारीरिक भोग करूँ, इसलिए तेल लेकर के आए जाते हैं महाप्रभु के लिए, और एक बार बहुत सुंदर ये बिस्तर गद्दा बना के लेके आए थे और महाप्रभु स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने महाप्रभु के सामने पूरे तेल के पात्र को फेंक दिया और एक कमरे में जाकर अपने आपको बंद कर लिया और तीन दिन तक कमरे बंद रहे। महाप्रभु को मालूम था कि ये बहुत हटी है, सत्यभामा का वैसे भी वो कृष्ण लीला में सत्यभामा थे तो उनका इस प्रकार का स्वभाव है, तो महाप्रभु स्वयं गए और बोला आप कुकिंग करो, बोला मुझे भूख नहीं है, बोला नहीं मेरे लिए कुकिंग करो, मैं आपके हाथ से खाना चाहता हूँ। तुरंत नरेंद्र उठे, स्नान इत्यादि किया और तुरंत अनेकों अनेकों आइटम महाप्रभु के लिए बनाए और फिर चैतन्य महाप्रभु खिलाए और महाप्रभु जन्म साथ बटके उनको भी खिलाए। तो वो बोलते हैं कि यदि मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो इतने नाराज हो जाएंगे कि मेरे से बात करना भी छोड़ देंगे और तीन दिन तक मुझसे भी बात नहीं, इतना क्रोध करेंगे। तो इनको ले जाने लगे, मेरा सारा समय इनको मनाने में लग जाएगा और ये अलग अलग सुविधाएं मुझे प्रेजेंट करते रहेंगे जो संन्यास धर्म के विपरीत है। फिर कहते हैं मुकुंद भी जब ये तपस्या देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और इनके दुख को देखकर मुझे भी दुगना दुख होता है, दुगना दुख होता है कि नहीं। तो ये पूरा रास्ता दुखी रहेंगे और मैं भी दुखी रहूंगा इनके दुख को देख के। और फिर दामोदर पंडित के बारे में बोलते हैं, ये सुनो दामोदर नहीं है, दूसरे दामोदर पंडित है, ब्रह्मचारी है। तो बोले ये तो दामोदर पंडित है, ये सोचते हैं कि मेरे को कुछ सामाजिक रीति रिवाज नहीं आता है, समाज नीति नियम है, मैं उस पर भी बच्चा हूँ, तो ये ऐसा समझते हैं, इसीलिए ये मेरे को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये ब्रह्मचारी और सन्यासी है। तो महाप्रभु ऐसा जो है उनको बोलते हैं, प्रभु आते हैं तो लिखते हैं कि सन्यासी को जो ब्रह्मचारी है उसको सन्यासी शिक्षा नहीं देना चाहिए, उसको असिस्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि दामोदर पंडित का ऐसा प्रेम था महाप्रभु के प्रति कि लोग कोई उनका उपहास न करें, तो इसलिए वो कभी कभी महाप्रभु को भी जो है ऐसा शिक्षा दे दिया करते थे। दो लीला तो थी, एक याद नहीं, एक दूसरा लीला था जिसके अंदर महाप्रभु एक तरुणी विधवा स्त्री के पुत्र से बड़ा स्नेह दिखाया करते थे। तो दामोदर पंडित लोग देखते थे और थोड़ा अलग अलग प्रकार से महाप्रभु को बोलने का प्रयास करते थे, लेकिन महाप्रभु और वो बिल्कुल श्याम वर्ण का था, तो महाप्रभु उसका जो दर्शन करते थे तो उनको कृष्ण का आभास होता था, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे, उसको बड़ा स्नेह करते थे। दामोदर पंडित ने एक दिन बहुत खींच करके महाप्रभु को डांट लगाई, बोले कि आप सन्यासी हो और पूरा समाज ऐसा समझेगा, ऐसा अर्थ निकालेगा कि आप इस किशोर बालक या छोटे बालक को प्रेम दिखाते हो और आपका उस तरुणी विधवा स्त्री के साथ कोई संबंध है, लोग ऐसा उपहास करेंगे। तो महाप्रभु ने स्वीकार तो कर लिया, उसके बाद उस बालक से नहीं मिले, लेकिन दामोदर पंडित को जो है बड़े टैक्टफुली डील किया, बोले ये साथ में रहेंगे तो और ये सही नहीं है इनके लिए, शिष्टाचार के रूप में किस प्रकार से करेक्ट करेंगे। हालांकि महाप्रभु समझते थे इनका बहुत प्रेम है, इसीलिए ऐसा मेरे प्रति गाढ़ प्रेम है और ये ऐसा नहीं चाहते कि पूरे समाज में कोई भी मेरे प्रति कुछ भी अपशब्द बोले या अपशब्द सोचे भी, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर बाद में बिंगाल भेज दिया। और बिंगाल में एक और निमित्त मात्र भेजा, मानव था कि दामोदर पंडित बहुत स्वभाव में कड़क है, तो जहां भी जाएंगे किसी प्रकार का सेवा में ढीलापन सहन नहीं करते, थोड़ा भाव भी तो जाएंगे बंगाल में सारे भाव सची माता और अद्वैताचार्य उधर सब, तो जो जो बहुत थोड़ा बहुत सेवा उधर में ढीले पड़ रहे होंगे उनको कस के डांट कराएंगे और सारे स्टैंडर्ड्स जो है कृष्ण कौशल के बराबर स्तर पे आ जाएंगे। तो जरूरी होता है कभी कभी पीछे से कोई ना कोई व्यक्ति हो, क्योंकि सचाल धर्म होता योग नष्ट करता है, समय के साथ जो दुनिया में हर चीज क्षीण होती है, तो बीच बीच में कुछ ऐसे भक्त चाहिए जो हमारे स्तर को उठा सके, है कि नहीं। तो दामोदर पंडित सुटेबल व्यक्ति थे इस चीज के लिए, क्योंकि स्वभाव से ही वो जो है मतलब दोष तो नहीं देखते थे, लेकिन हाँ क्योंकि उनका भगवान के प्रति और की सेवा के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए वो सहन नहीं करते थे कि सेवा में या वैश्य सदाचार में किसी प्रकार की त्रुटि हो, है कि नहीं। वो उनके अपने अहंकार वश या क्रोध वश नहीं करेक्ट करते थे, भगवान के प्रति प्रेम वश जो है करेक्ट किया करते थे, क्योंकि दुनिया में करेक्ट करने बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति के स्तर जो है भक्ति प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते। तो ऐसा सत्ता और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बोलते हैं कि आप सब कुछ दिन जब तक मैं दक्षिण भारत यात्रा करके सेतु बंद से वापस आता हूं तब तक आप सब ये लीला चल रहे हो। तो एक्चुअली तो पिछले श्लोक पयाल के अंदर कृष्णा श्रद्धा गोस्वामी कहते हैं वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के सब गुणों के वशीभूत थे, उन्होंने दोषारोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया, कि एक्चुअली महाप्रभु सब ग्लोरीफाई कर रहे थे और महाप्रभु स्वयं भी उनके स्नेह से वशीभूत थे। और प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धर्म का अंगीकार किया था और वो न्यासी कुल शिरोमणि है, न्यासी कुल नायक है, सभी सन्यासियों के हीरो हैं, कि किस प्रकार से सन्यासी को आचरण करना चाहिए कि उसके व्यवहार में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि वो सभी वर्णों और सभी आश्रम के गुरु होते हैं। यदि सन्यासी ठीक प्रकार से आचरण नहीं करेंगे तो अन्य सभी लोग भी उन्हीं के आचरण का फॉलो करेंगे। यद्य जाति श्रेष्ठ तत्व करो जन्म। और सन्यास के बड़े कड़क धर्म चैतन्य महाप्रभु जो है फॉलो किया करते थे, लेकिन उनके जो भक्त थे शुद्ध भक्त थे प्रबल के भगवत प्रेम उनके भक्त इन सामाजिक नीति नियमों को इन सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व दिया करते थे, है कि नहीं। तो इसीलिए यह सामाजिक नियम है कि हमें सुबह उठ करके दंत साफ करके स्नान करके उसके बाद ही कुछ संन्यास जाप करके सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि साधु भट्टाचार्य ने उठते ही बिस्तर से उठे और जगन्नाथ जी का महत्व स्वीकार कर लिया तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तो जो महाप्रभु के सब भक्त हैं उसी प्रकार से सामाजिक व्यवहारों को इतना अधिक महत्व नहीं देते, ये कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की भक्ति से भी ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब उन्होंने कृष्ण प्रेम से अभिभूत होकर सामाजिक व्यवहार की तनिक भी परवाह नहीं की। ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां पर उन्होंने सामाजिक व्यवहार को ज्यादा महत्व न दे करके कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व दिया है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु स्वयं के उदाहरण में भी देखते हैं कि जब वो 24 वर्ष के थे तो उनकी वृद्धा और विधवा माता थी और तरुणी पत्नी थी विष्णुप्रिया जो 16 वर्ष की थी, लेकिन उनका भी त्याग करके चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। तो सामाजिक दृष्टि से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक से देखा जाए तो गलत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने एक परिवार को त्याग के पूरे विष्णु को अपना परिवार बनाया, तो वो दृष्टि से बिल्कुल गलत भी नहीं है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग दोषारोपण करेंगे, अरे ये कैसा धर्म है, है कि नहीं। और ये भी बोल सकता है कि जब संन्यास लेना ही था तो विवाह किया ही क्यों, लेकिन विष्णु प्रिया किसी और से विवाह कर सकती थी तो क्यों ऐसा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो बहुत गलत हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद हम सबको एक उदाहरण देते हैं कि दुर्भाग्यवश जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हमें सामान्य जनता की आलोचना से बचने के लिए सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना होगा। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि जो उनके भक्त हैं देशरी परफेक्ट जेंटलमैन उनको ऐसा नहीं कि सामाजिक नीति नियमों का पालन ना करें कि हाँ चलो गाड़ी के आगे स्कॉन लिखा है तो उसके लिए कोई लाल बत्ती नहीं है रॉन्ग साइड में चल सकते हैं, तो ऐसे नीति नियमों का हमें पालन करना बहुत आवश्यक है। आ डिवोटी शुड नॉट बी प्रीमैच्योरली ट्रांसेंडेंटल कि वो तो भगवान का भक्त बन गया है तो कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मुझे याद है कई बार 3-4 बार अब तक वैसे प्रश्न भी आया है जब भी खासकर हम क्षत्रिय धर्म की रचना के बारे में चर्चा करते हैं कुछ भी कि बोले कि भगवान कहते धर्म संस्था पदार्थ था यह सब भगवान भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं और परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। तो जब हम अपने आस पास अधर्म देखें कभी तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को तो प्रेरित किया कि आप जो है हिंसा करो और अपने लोगों का वध करो, तो क्या हमें भी धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार कर देना चाहिए। ऐसा प्रश्न कई बार लोग पूछ लेते हैं उनके अपने जीवन में कुछ समस्या आई होती है और वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते उस समस्या के बारे में, तो लगता है कि असली आखिरी जो अब हथियार है वो यही है कि हम हिंसा को अपना लें। तो हमने बोला नहीं, भगवान ने बोला था अर्जुन को वध करने के लिए, लेकिन उसके पहले गीता सुना थी किस चेतना में वध करना है कि नहीं। तो हम और आप धर्म की स्थापना का ठेका नहीं ले सकते हिंसा करके, है कि नहीं। हम अपने आचरण के द्वारा अपने जीवन में धर्म का पालन करके धर्म की स्थापना करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन के समान नहीं कि कोई भी धर्म पाबंदी मिले गो तो बंदूक लिया और शूट कर दिया उसे, तो कलयुग में हर किसी का वध करना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो है तो इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। तो जब तक हम भौतिक जगत में है साधना भक्त है हमें जो है सामाजिक रीति रिवाज के प्रति नीति नियम के प्रति बहुत सतर्क होना चाहिए, है कि नहीं। तो हमें ट्रांसजेंडर नहीं होना चाहिए उस प्रकार से, वी शुड बी केयरफुल ऑफ पब्लिक ओपिनियन बेसिकली कि जो समाज की धारणा है उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक बात हम शास्त्र में सुनते हैं क्रोध भक्त द्वेषी जने, यदि कोई भक्तों से द्वेष करता है तो उसके प्रति हम क्रोध प्रकट कर सकते हैं। और उदाहरण आता है हनुमान जी का जिन्होंने क्रोधवश जो है रावण کہ سری لنکا کا جو ہے جلا دیا اور ود کیا وہاں پہ, تو یدھ کرنے کے لیے کوئی ہستے سے یدھ نہیں کر سکتا, اس کو کروڈیوس ہونا پڑے گا, ہے کہ نہیں. اور ہم ارجن کا دھارم پروپادی دیتے ہیں کہ ہمیں کروپ کو جو ہے اس پرکار سے اپیوگ کرنا چاہیے. لیکن اب جب ہم بھی کبھی کبھی پرچار کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو بھکتوں کے سماج میں ہم بھی کئی بھکتوں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بھکتوں سے دویش کرتے ہیں یا ان پہ ہنسا اتیادی کرتے ہیں. جائے شری شاردا کرشن بھگوان کی جائے, شری جگنناتھ بلدیو سبھدرا مہارانی کی جائے, شری کرشن بلرام کی جائے, شری گوڑ تار کی جائے, شری پروپاد کی جائے. تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس رستے میں ہوتے ہیں, کبھی آٹو والا پیسے واپس نہیں کرتا, یا پھر ایسے بدماش لوگ مل جاتے ہیں, کھل لوگ مل جاتے ہیں جو بھکتوں سے دروہار کرتے ہیں, تو کیا ہمیں کروپ پکڑ لینا چاہیے وہاں پہ اور اس کی پٹائی کر دینی چاہیے؟ تو ایسی چرچا کئی بار یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اور کئی بار بھکت سماج چرچا ہوئی, اس کے کئی سارے آرگیومنٹس ملتے ہیں کہ ہاں کر لینا چاہیے. کئی بار بولتے ہیں نہیں, ہم سنستھا کو پرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے ایسا, کیونکہ اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ بول جا رہے ہیں فالو ہو کے بھی اس پرکار سے ویوہار کرتے ہو, ہے کہ نہیں. جیسے کئی بار مندر کے پاس آتے ہیں آٹو لے کے آتے ہیں تو آٹو والا جو ہے 10 روپے 5 روپے چینج ہوتا ہے تو دیتے ہی نہیں ہے, تو بولے آپ تو پیسے آپ سے کم لیا ہے, اور پھر بحث بازی بھی کرنے لگ جاتے ہیں, شور کھڑا کر دیتے ہیں, پہلے اتنی بات ہوئی تھی, پہلے یہ ہوا تھا, تو کیا کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں. تو کیا ہمیں ان سے لڑ کے بھگوان کی سمپتی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ بالکل لینی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں پروپاد کے جیون میں بھی, جب وہ آئے تھے ودیش سے اور چھپی والا جب میں جانے کے لیے جا رہے تھے تو ٹیکسی والے نے رات کے لگ بھگ 1 بجے تھے, 12:30 تھے, اور وہ جانا دگنے دام دے رہا تھا, تو پروپاد کافی دیر تک لڑتے رہے اس کے ساتھ, لیکن اب تو پیسے لے چکا تھا, چینج نہیں دے رہا تھا, تو پروپاد کیا کرتے ہیں, تو دینا پڑا. لیکن پروپاد نے کیرتن مار سے بولا کہ چیٹی ڈس لائک ہے. تو بھگوان کی سمپتی بچانے کے لیے تو ہمیں لیکن ٹیکس بھی ڈیل کرنا چاہیے, ایسا نہیں مار پیٹ کرو, لڑائی دنگا کرو, اسے پیسہ بھی نکلوا لو اور سین بھی کریٹ نہ کرو, ہے کہ نہیں. ارتھات یا کوئی لڑائی ہو گیا ہے تو اس ویکتی سے کو ڈیل بھی کیا جائے لیکن پبلک اوپینین بھی خراب ہو, ایسا ہم کو ٹیکس بھی ڈیل کرنا چاہیے, اس پرکار سے ریکنسائل کرنا چاہیے, کیونکہ اس ویکتی نے جو ویوہار کیا وہ تو کوئی نہیں دیکھے گا, وہ تو بدماش سب کا سوبھاؤ ہے, لیکن بھکتوں نے بھی ایسے بار نہیں انہیں یاد رکھے, لیکن کہ ہرے کرشن والوں نے بھی ایسے کیا ویسے کیا. تو اس پرکار جیسے آسٹریلیا میں ایک بار جب پروپاد جی تھے تو رتھ یاترا تھی وہاں پہ, تو جہاں پہ تو بھکتوں نے بڑی ٹیکس پولیس کی پرمیشن لی تھی, بولا تھوڑے سے لوگ ہوں گے 10-15 لوگ ہوں گے ایسے کر کے سمبھو رہتا ہے, تو بہت بڑی آیوجن کیا تھا. تو اور پروپاد جی نے بھی کہا تھا آپ کرو, پروپاد سبری جی پروپاد صاحب وہاں پہ تھے اس سمے آسٹریلیا کے اندر تھے. لیکن ایک دن پہلے کیا ہوا, جہاں پر رتھ کی تیاری ہو رہی تھی تو بالکل سامنے والی بلڈنگ کے اندر آگ لگ گئی, اونچی بلڈنگ کس کے اندر آگ لگ گئی جو ہے. تو اب لوگوں کو کیسے بچایا جائے؟ تو بھکتوں نے جو ہے یہ جو رتھ کے اوپر کپڑا لگاتے ہیں کینوس, ہے کہ نہیں, تو وہ کپڑا تھا تو سب بھکتوں نے پکڑ لیا اسے اور اوپر سے بڑا چھلانگ مارا, ہے کہ نہیں, تو ایسے کئی لوگوں کو بچا لیا انہوں نے, ہے کہ نہیں. اور یہ تھا تو پورا میڈیا کے اندر سنسنی خیز خبر ہو گیا, ہرے کرشنا والوں نے جو ہے ایسے اور سماج دوسرے وہاں بڑھیا کاریہ کیا ہے, لوگوں کو بچا لیا ہے, تو جو ہے تو بڑا خبر ہو گیا. لیکن اگلے دن میں دیکھا اتنا بڑا رتھ یاترا ہے, تو پھر میئر اور اتیادی نے تھوڑا سا پوچھا, لیکن تب تک پبلک اوپینین آ چکی تھی اتنی بڑی کہ رتھ یاترا پہ اتنا اچھا انہوں نے سیوا کیا, مطلب لوگوں کی جان بچائی ہے. تو پرابلم بعد میں کہتے سی جگنناتھ وانٹیڈ ایوری تھنگ بگ, جگنناتھ جو ہے بڑا چاہتے تھے, اپنا ویوستھا خود کر لیتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ پبلک دھارنا کے اندر یہ بہت اچھا اچھا جاتا ہے. تو ہم حالانکہ پبلک کی اوپینین پہ نہیں چلنا چاہیے بھکتوں کو, ایسا نہیں کہ ہم کرشن بھکتی سدھانتوں کو جو ہے کمپرومائز کریں, ڈائیوٹ کریں کہ لوگ پرسن ہوں گے کہ ہاں لوگوں کو ہندی بھجن سننا اچھا لگتا ہے تو ہمارے کرشن مہانتا چھوڑ کے اپنا کیرتن بدل لیں گے. تو یہ تو بھی چیتن مہاپ سدھانتوں کا کو ڈائیوٹ کرنا ہے کہ نہیں. تو ہمیں جو پرامانک بدن ہے ویشنو سپنا ہے وہی گانے چاہیے, ایسے ایسے کچھ کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پرچار کے نام پہ ڈائلوٹ نہیں کرنی چاہیے, دیش کال کو اپنے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے میچورٹی چاہیے, ہے کہ نہیں. تو ایسا نہیں کہ ہمیں پبلک اوپینین کو جان کر کے اپنا سدھانت بدل لینا چاہیے, لیکن ہاں ایسے ایکٹ کرنا چاہیے کہ پبلک اوپینین جو ہے उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे भारत में तो तुलसी पूजा करते हैं कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन विदेश में कोई देखता है कि तुलसी की पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो उनको शौक लग जाता है, बोले कैसे लोग हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमारे कई भक्तों ने ऐसा कैंप करते हैं कि जब गेस्ट को मंदिर में बुलाते हैं किसी नए व्यक्ति को, तो मंदिरों के अंदर जिस समय तुलसी पूजा हो रही होती है, शालिग्राम की पूजा हो रही होती है, बुलाते नहीं है, बोले ये आगे पहली बार में भाग जाएंगे, बोले ये बहुत विचित्र लोग हैं, ये धर्म तो फॉलो नहीं कर सकते। डीटी वर्जन फिर भी समझ में आया, चलो ठीक है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुना था उन्होंने, लेकिन वो देखो एक पेड़ की पौधे की आरती कर रहे तो बड़ा शौक लग जाता है। हमें एक भक्त ने मेल भेजा था अभी, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था जब वो माता जी प्रॉपर डिसाइपल है, वो बहुत बनी, तो उन्होंने ऐसे देखा उस समय मंदिर पहुंचे जब तुलसी आरती चल रही थी, उन्होंने पहली सोचा ये तो बहुत विचित्र लोग है, प्रॉपर किताब तो अच्छी लेकिन धर्म बड़ा अलग है, लेकिन तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन से जो है हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म को कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, ऐसा तब तात्पर्य में लिख रहे हैं। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु के हृदय का आगे जो है वर्णन प्रसाद कविराज गोस्वामी इन श्लोकों में कर रहे हैं, तो 30 नंबर प्रयाण के अंदर ऐसा है, चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन आपने में आगे दुख करे न सहन। अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम था उसका सही सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो ये तो अब सीधा कृष्ण गोस्वामी ने सर्टिफाई कर दिया, किसी के लिए वर्णन करना ये असंभव है। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फल स्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। तो अब ये जो प्यार है और ये जो ये पूरा टेक्स्ट है, पिछले वाला जो अभी गया, जो अभी आज चर्चा कर रहे हैं, अगले एक दो कक्षा में भी चर्चा होगा, उसके अंदर जो शुद्ध प्रेम है, जो ट्रांसेंडेंटल लव है भगवान और उनके भक्तों के प्रति और भक्तों के प्रति, उसका वर्णन होगा कि शुद्ध प्रेम क्या होता है, वास्तविकता के अंदर क्या वैष्णव समाज के अंदर डीलिंग होती है, कैसे जो रिलेशनशिप है, जो प्रेम है दो व्यक्तियों के बीच में, दो भक्तों के बीच में, उसमें सदैव एकमात्र एक ही सिद्धांत सेंटर होता है, और वो सिद्धांत बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं बहुत बार ही। तो वो सिद्धांत बहुत सरल है, हाउ कैन आई सर्व यू। जब भी अन्य भक्त मिलते हैं, प्रभुपाद ने जो नियम बनाया कि हम एक दूसरे को प्रभु के रूप में बुलाते हैं, ये उच्चारण करना आवश्यक है, एक दूसरे को प्रभु के रूप में बुलाएं, लेकिन प्रभु खाली बोले ही नहीं, प्रभु समझे भी। तो ये सर्वेंट और सर्वेंट और सर्वेंट की जो भावना, यही सिद्धांत होना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व यू, ये दो भक्तों के बीच का यही सिद्धांत होना चाहिए, हाउ कैन आई प्लीज यू, कि अन्य भक्त की प्रसन्नता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी भक्ति से जो अन्य भक्त प्रसन्न होने चाहिए। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है वो महाप्रभु के दुख को देख के दुखी होते हैं और महाप्रभु उनके रूप को दुखी होकर होते हैं, है कि नहीं। लेकिन दोनों का हालांकि कुछ कष्ट होता है, पर्सनल सैक्रिफाइस होता है, लेकिन फिर भी वो जिस मिशन के लिए मिशन को पूरा करते हैं। तो अपने भक्तों के प्रति चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम था उसका सही सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फल स्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। तो संन्यास ग्रहण करना तो निश्चित रूप से अपने परिवार को त्यागना, महिला के धर्म ग्रहण करना, सब जगह ट्रेवल करना, तो कई सारे कष्ट हैं, लेकिन महाप्रभु ने उनको सहन किया। लेकिन आगे सही दुख देखी जय भक्त दुख पाए, सही दुख कार शक्ति सहन न जाए। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु असह्य नियमों का पालन करते हैं, असहनीय नियमों का पालन करते हैं, और सारे भक्त उनसे अत्यधिक दुखी होते हैं। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते किंतु वे अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते। कि चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर नियम का पालन करते थे, कड़क जमीन पर सोएंगे और सर्दी में भी 3 बार स्नान करेंगे, और ऐसे ऐसे कई सारे कठोर नियमों का महापालन करते। जब भक्त देखते चैतन्य महाप्रभु इतना अधिक पॉस्चैरिटी फॉलो कर रहे हैं, इतना अधिक तपस्या फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अंदर से बहुत दुख लगता था। जैसे एक बार रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु की निंदा की, ये सन्यासी कितना खाता है, सबके समान भोजन खाता है ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु जिनसे जो है अपना और उनके घर खिलाते थे, घर में आमंत्रित करते थे और इनको शाक भात और कई सारे व्यंजन जो है करते थे, बड़े प्रेम सर्व करते थे, तो महापुरुष भक्त को कैसे नाराज करें, है कि नहीं? हमारा भी ऐसा अनुभव है कि कभी कभी वीरज भक्तों के घर जाते तो इतने प्रकार के आइटम बनाते हैं और नहीं खाओ तो उनको बहुत बुरा लगता है कि प्रभु जी ने हमारे घर में लिया नहीं, है कि नहीं? तो हम ऐसे भक्तों को भेजते जिनकी थोड़ी जो है वो खा सकते हैं, तो वीरज भक्त थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ चलो प्रभु जी ने पाया था, और जो थोड़ा ज्यादा नहीं पा सकते तो गृह भक्तों को दुख लगता है बहुत ज्यादा कि अरे हमारे घर में आए प्रभु जी, हम सेवा ठीक से नहीं कर पाए या इस प्रकार से। तो कई भक्त थोड़ा अवॉइड करते हैं और दूसरे भक्तों को भेजते, तो आप जाओ आप सही कैंडिडेट हो इस चीज के लिए, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं तो वो सब सारे भट्टाचार्य और अन्य अन्य भक्त जितने हैं तो वो महाप्रभु को रोज आमंत्रित करते थे और अनेकों अनेक पकवान बनाते थे और महाप्रभु को खाना पड़ता था उनसे प्रेम और जीलिंग के प्रति, है कि नहीं? तो लेकिन रामचंद्र को क्रिटिसाइज किया था, तो महाप्रभु ने अपने डाइट को आई थिंक वन हाफ कर दिया, मैंने वन फोर्थ ही कर दिया अपने डाइट को, सब भक्तों को इतना दुख, और ये वो जगह थोड़ा महाप्रसाद लेते थे, चावल थोड़ा शाक और बस, सब भक्तों को इतना दुख लगता था, इतना दुख लगता था, वो उन्होंने भी कल खाना शुरू कर दिया और देखा महाप्रभु का स्वास्थ्य भी गिर रहा है, लेकिन महाप्रभु तो सहन करते थे, सन्यासी थे, और सब प्रार्थना करते थे रामचंद्रपुर यहाँ से चले जाए। और एक बार ऐसे भगवान करे तो भक्तों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और चले गए गर्भपुरी से, और भक्त इतने प्रसन्न हो गए, फिर महाप्रभु को जो है फिर से खिलाने लगे अच्छे प्रकार से। तो ऐसे महाप्रभु का छोटा सा नियम पालन करते थे बहुत, तो भक्तों को बहुत पीड़ा होती थी। अंत लीला के अंदर वर्णन आएगा तो मैं एक लीला मंत्र अगर समय बचा तो डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचता था। एक लीला और है जैसे वो भी अंत लीला के मध्य लीला में आएगा, उसमें है कि राजा प्रताप रुद्र है तो वो महाप्रभु से मिलना चाहते थे और महाप्रभु बोल रहे कि नहीं मैं तो नहीं मिलूंगा और बड़ा कठोर उपदेश देते हैं। तो हर प्रकार साधु भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु हर कोई रिकमेंडेशन देते हैं कि नहीं आप मिलो आप मिलो आप मिलो, लेकिन महाप्रभु फॉलो नहीं करते और फिर बोलते हैं कि अगली बार यदि आपने बोला तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाऊंगा। और भक्त लोग क्या बोले, तो जो है कुछ बोल नहीं सकते थे। फिर रामचंद्र आए तो वो जो गवर्नर थे थोड़े चतुर थे व्यवहार के अंदर, तो बोलते रहते महाप्रभु को, लेकिन बातें बातों में प्रताप रुद्र के, क्योंकि प्रताप रुद्र के गवर्नर थे तो कठोर जानते थे निकट संबंधी थे, तो बार बार उनका गुणगान जरूर करते थे। तो महाप्रभु हृदय सॉफ्ट हो गया, बार बार किसी के प्रसन्ना सुनते हैं। तो फिर एक बार और एक पत्र आया कि बोले राजा जो है प्राण त्याग देगा आपने या फिर राज्य छोड़ देगा। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, निकाल उन्होंने बोला ठीक है उसके बेटे को बुला लेते हैं। तो फिर बेटे को बुलाया, महाप्रभु ने आलिंगन किया और उसको फिर वो राजा को थोड़ा शांति मिला, जीवन जीने का सहारा तो मिला। बाद में फिर जो है महाप्रभु ने उनको कृपा प्रदान की कब रथ यात्रा के उत्सव के दौरान, क्योंकि कुछ गिने चुने व्यक्तियों में से वो एक थे जो देख पाए कि महाप्रभु सातों सर्कल में एक साथ मौजूद है, और फिर महाप्रभु ने उनका आलिंगन इत्यादि किया। तो महाप्रभु बड़े कठोर थे और भक्त अगर कुछ ऐसी महाप्रभु से प्रार्थना कर देते थे जो वो स्वीकार नहीं कर सकते थे तो चैतन्य महाप्रभु सीधा वचन बोलते थे, देखो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाऊंगा, बोलते नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे भक्तों को जानते थे कि महाप्रभु बहुत कठोर स्वभाव के हैं इस मामले के अंदर। ऐसे कई जगह प्रदर्शित होगा और महाप्रभु कई बार ऐसा एक प्रेम पूर्ण धमकी दिया करते थे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर इसके आगे इसीलिए महाप्रभु जो ये पिछले श्लोक हमने पढ़े थे, गुणे दोषों का रचले सभा निषेधिया एका की भ्रमि भेद तीर्थ वैराग्य करिया, अतः उन्होंने अपने इच्छा चलने और दुखी होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुणों को दोष कहकर घोषित किया। तात्पर्य महाप्रभु सारे तीर्थ स्थानों का अकेले भ्रमण करना चाहते थे और संन्यास धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे, तो उन्होंने सब भक्तों को नहीं चाहते कि कोई साथ में चले और दुखी भी ना हो, इसलिए महाप्रभु ने उनके ऐसे दिव्य प्रेम को जो है उनके सामने वर्णन किया और ऐसे प्रस्तुत किया कि उनको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि अरे हमने कोई गलती की है। तो किसी व्यक्ति का हमने गलती बता दो ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाता पार्टनर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने ये एक प्रेम रूप से उनको जो है पराजित कर दिया और कंसोल भी किया कि हाँ ठीक है मैं आपके दिव्य प्रेम को घनिष्ठ प्रेम को स्वीकार भी करता हूँ। फिर आगे बोले तबे चारी जन बहु मिनती करेला स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कभी न कभू न मानिला। तब चार भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की कि वे महाप्रभु के साथ चले, यही चार जगदानंद पंडित, मुकुंदन, दामोदर पंडित और नित्यानंद प्रभु, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब नित्यानंद कहे जया ज्ञान अमान दुख सुख ये हो कर्तव्य अमान, किंतु एक निवेदन करो आरकार विचार करिया कहा कर अंगीकार, कौपिन बहिर्वास आर जग पात्र आर किछु नहीं जावे सब एक मात्र। तो विचार प्रभु ने कहा आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। तो बोले महाप्रभु पार्टी के जानते हैं तो ठीक है, अगर चाहते हो तो हमें सुख मिले या दुख हम उसका पालन करेंगे, लेकिन फिर भी एक निवेदन है पालन कर लो। एक्चुअली ये भी वैष्णव समाज का वहां पे कहते हैं वहां पर टाइम रीति रिवाज था कि कुछ भी विनती करना होता था तो दो महान भक्त थे जो महाप्रभु के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकते थे, बाकी को तो महाप्रभु कोई बोल भी नहीं सकता जाता। तो एक नित्यानंद प्रभु एक अद्वैत आचार्य, तो वही जाके महाप्रभु को कुछ बोलते थे और थोड़ा बहुत कभी कभी स्वरूप डालते थे उसको। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप इस पर विचार करें और यदि उचित समझे तो स्वीकार कर लें, अगर आपको ठीक लगता है तो स्वीकार कर लें। और आप अपने साथ एक कॉपी बाह्य अवस्था एक जल पात्र लें, आप इससे अधिक कुछ भी न लें। बोले ये आप सामान लेके जाइए। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या है? तो मां दुई तो आप पीछे धराई गई आपका श्लोक, तो मां दुई हस्तवर्धन नाम करने जल पात्र बहिर्वास वही में के मने, तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम करने जल पात्र बहिर्वास वही में के मने, तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम करने जल पात्र बहिर्वास वही पर के मने। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी उंगलियों का नाम गिनते थे, एक हाथ जप में लगा रहता था तो दूसरा हाथ जप की संख्या बताता था। हमारी तो भीड़ में काउंटर शायद नहीं यूज करते थे। इसका समर्थन चेतन चंद्रामृत तथा श्री रूप गोस्वामी कृत सप्तम माला से होता है। बंधन प्रेम भर प्रकंपित कर ग्रंथि न कटि डोर गई संख्या तो निज लोक मंगल हरे कृष्ण नाम नाम जपन। तो ये चतुर चंद्रामृत चंद्रामृत का श्लोक 16 है। और हरे कृष्ण उच्च सुरत रसनो नाम गणना कृत ग्रंथि शेण सुगर कटि सूत्रोज्वल कर। ये चैतन्य चैतन्य अष्टक का श्लोक है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसी संख्या की संस्तुति की है। हरिदास ठाकुर नित्य 3 लाख नाम का जाप करते थे। 16 माला का अर्थ है लगभग 28,000 नाम। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या के नाम जप करना अनिवार्य है। तो प्रभु ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत हम सबके लिए बोल रहे हैं। हम सबको कम से कम 16 माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए। 100 मानने वाला चतुर्माला नहीं कर पाए तो भी। और कई बार लोग पूछते हैं कि आप गिनती क्यों करते हो, आप दिखावा क्यों करते हो, यू नो, और फीडबैक में हाथ डाल के घूम रहे, इसका क्या फायदा। हम तो सारा दिन नाम जप करते हैं, पूरे हृदय के अंदर ही अंदर होता रहता है। कितना अंदर होता है तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो है फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं। कई बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा है कि नहीं। मन थोड़ी आपको चंगा हो जाएगा, सारे काम लोगों से भरा हुआ है, वही साफ करने के लिए तो बोलते जाओ हरिनाम का जप करोगे तभी तो साफ होगा। तो गिनती नहीं होगी तो क्या होगा। हम कभी 2 करेंगे, कभी 4 करेंगे, कभी 10 करेंगे, कभी है कि नहीं। और हमें लगे हमने कितना कर लिया है, तो काउंटर में हाथ माला में हाथ डाले तो पता लगता है 16 माला कितना, 108 की माला करना, 108 किलो की माला लगती है कि नहीं। आप बड़े बड़े रेसलिंग चैंपियन को भी दे देंगे माला उठा देंगे नींद आ जाएगा, वो ऐसे उठा लेंगे 50 किलो वजन उठा लेंगे, चाहे बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन जब करने के लिए वो शक्ति तो चाहिए। वो तुम्हारा सुनिश्चित हमारे सलाहरी, तो ये जो है शक्ति चाहिए। वही व्यक्ति सदैव जब कर सकता है जिनके अंदर ये 4 गुण है। तो जो है प्रॉपर यहाँ पे मुख्यतः एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस प्रकार हमको जो है संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। ऐसा नहीं जितना मन में आएगा उतना कर लिया। और यही हमें अपने प्रचार में भी एम्फेसाइज करना चाहिए कि भक्तों को नियमित संख्या में जप करना चाहिए, एक बद्ध होकर, रेगुलेटेड होकर। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यही करते थे, क्षण गोस्वामी भी करते थे, और हरिदास ठाकुर भी यही किया करते थे। और इस कौन में क्या संख्या निश्चित किया प्रभुपाद जी ने 16। तो संख्या को डाइल्यूट ना करें कभी भी, है कि नहीं। 4 भी ठीक है, 8 भी ठीक है, कुछ लोग इस कौन में बोलते हैं 2 करो लेकिन ध्यान से करो, अच्छे से 2 करो, ताकि 16 का करो, लेकिन 16 तो करो। जो 16 करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए अच्छे क्वालिटी इंप्रूव करने का, लेकिन 16 से कम है कम से कम क्वांटिटी तो बढ़ाए किसी प्रकार से, है कि नहीं। और भी ध्यान पूर्वक करें, ऐसा नहीं कि कीर्तन में, प्रवचन में, एरो मेट्रो में, गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो इस प्रकार का जब अवॉइड करेंगे ज्यादा अच्छा है, तो हमारे माला में क्वालिटी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो फिर इस प्रयास श्लोक के अंदर एक महत्वपूर्ण स्मृत प्रसंग में आती है कि बहुत सबके लिए शिक्षाप्रद है कि भगवान जो है अपने भक्तों के, अपने हर प्रकार के भक्त के हर प्रकार के स्वभाव का रसा स्वादन करते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कर रहे हैं। उनके कृष्ण प्रेम के दिव्य गुणों को उनके दोष के रूप में प्रकट करके उसका आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उसे नाराज नहीं कि नित्यानंद दंड क्यों तोड़ दिया मेरा, तो अब महाप्रभु ने बोल दिया बैनिश कर दिया उसे, ऐसा नहीं है। महाप्रभु भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान कृष्ण का भी स्वभाव है, उनके सब भक्तों का जो है अलग अलग स्वभाव है। एंड कृष्ण सुप्रीम एंजॉय, क्यों अलग स्वभाव है, क्योंकि भगवान एंजॉय कर पाएंगे अलग अलग प्रकार से। इसीलिए भगवान के ही जो पार्षद हैं वही राक्षस बन के भी आते हैं, कि गोलो वृंदावन में कोई लड़ाई करेगा नहीं खास, लेकिन भगवान से कोई वीर रस का स्वादन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने ही पार्षदों को असुर बना करके जमीन पे भेजते हैं और खुद ही मृत्यु लोक में आते हैं ताकि एंजॉय कर सको, है कि नहीं। तो भगवान ये लीला इसलिए करते हैं। तो कृष्ण जो है किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से भक्तों के हर प्रकार के रस को आस्वादन कर रहे हैं। तो जब हम भक्तों के समाज में हो तो भक्तों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। और देखिए कई बार भक्तों में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जब हमने ऐसा वैष्णव समाज में शुरू में मेरा अनुभव है, जैसे मतभेद होते थे तो बड़ा अजीब लगता था। अरे तो सब भक्त है, इनका तो एक मत होना चाहिए, सबका अलग अलग मत क्यों है। कोई बोलता है ऐसे होना चाहिए, कोई बोलता है वैसे करना चाहिए, और सबका ठीक भी हो सकता है, है कि नहीं? और बड़ा मुश्किल होता है सिचुएशन को रिकंसाइल करना, सारे मिलकर चले तो चले कैसे? तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कई बार कि ये तो भक्त है, एक ही प्रकार से आचरण करने चाहिए। तो बाद में कुछ समय के बाद में धीरे धीरे अनुभव के साथ में ये मिथ्या धारणा जो है प्यूरिफाई होते जा रही है कि नहीं नहीं सब इंडिविजुअल है और इंडिविजुअली रहेंगे और इनकी इंडिविजुअलिटी कृष्ण बहुत इंजॉय करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए भक्त समाज के अंदर कृष्ण ही अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि वो अलग अलग प्रकार से सेवा करें। तो कोई भी दो भक्त, नो टू पीपल आर द सेम, कोई भी दो व्यक्ति सेम होते नहीं। अगर सेम हो जाएंगे तो कृष्ण सबको एक ही प्रकार से एंजॉय करें, कृष्ण बोर हो जाएंगे, अरे भाई सारे एक जैसे आ गए, है कि नहीं? तो इसीलिए जब बहुमत होते हैं, लोगों के अलग अलग मत होते हैं, एक्चुअली द बेस्ट कम्स आउट, है ना? इसीलिए इस्कॉन ने प्रॉपर सिस्टम है, जीबीसी बनाया, टेंपल प्रेसिडेंट, टेंपल का काउंसिल्स, मैनेजमेंट मीटिंग्स, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। कई बार जब मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत परेशानी होती है, इतना संकट हो जाता है सारे भक्तों को एक लेके चलना, लेकिन भाई व्यक्ति असली प्रकार से मैनेजमेंट कर सकता है जो जानता है कैसे इस मीटिंग का लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण इन सारे भक्तों के व्यवहार को, इनके आइडिया को एंजॉय कर सके। लेट कृष्ण भी ना एंजॉय, चाहे नित्यानंद प्रभु जैसे कह देता है हमको कष्ट क्यों ना हो, बट कृष्ण शुड बी द एंजॉयर, ये सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए जो अलग 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 भक्त हैं अलग अलग प्रकार से जब सेवा करते हैं तो कृष्ण उसको बहुत एंजॉय करते हैं कि हाँ ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। अगर मान लीजिए हमारे मंदिर में एक नोटिस लग जाए, ऐसा मान लीजिए खाली कि भगवान कृष्ण को केवल आप सेम ही अर्पित कर सकते हैं, बस अब आज हम एक सेम की दुकान लगा दी, इसके अलावा कोई फल, कोई मिठाई, कोई फूल नहीं। अब सोचिए, मान लीजिए अजीब सा हो जाएगा थोड़ा सा, है कि नहीं? केवल सेम ही सेम, और यहाँ पे हजार सेम ही सेम लगे हुए हैं, सेम की पेटियां हैं, प्रसाद में सेम ही मिल रहा है कि नहीं? तो बहुत अजीब हो जाएगा। कृष्ण ऑल्सो एंजॉय वैरायटी, वैरायटी का मतलब एंजॉयमेंट इन द सेम वे, जो डिवोटीज आर मेनी उनके में वैरायटी है, कृष्ण एंजॉयस, यू नो। तो इस भावना को ग्रहण करके हम भक्तों के अलग अलग नेचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा प्रयास तो सारे भक्त एक ही जैसे हैं, वो कदापि होने ही नहीं वाले हैं। कृष्ण ने उनको एक बनाया ही नहीं है, कभी भी रोबोट थोड़ी बनाया है, है कि नहीं? कार में फोटो कॉपी थोड़ी बना दे रही है, हरे कृष्ण फोटो कॉपी बनाया है, देयर इंडिविजुअल पीपल, है कि नहीं? तो कृष्ण एंजॉय करते हैं। और दूसरा एक और चीज है जो प्रभा पिछले श्लोक के दात्र ने बोले थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं से धारकों का बड़ी कठोरता से पालन करते थे और अपने अनुयायियों से चाहते हैं कि वही बड़ी कठोरता से सारे नियमों का पालन करें। तो लॉर्ड भगवान सिद्धांत नहीं ब्रेक करते, क्योंकि भगवान यदि अगर किसी नियम का उल्लंघन करते थे तो पूरी दुनिया बोलती देखो महाप्रभु ने ऐसा किया है, हम भी कर सकते हैं, और फिर एक्स्ट्रापोलेट कर देते उसका और फिर जाने कहां 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 तक पहुंचा देते, है कि नहीं? लेकिन उसके विपरीत चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में हम देखते हैं उनका व्यवहार थोड़ा महावधान्याय होता है। भगवान महावधान्याय है लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो भक्त है वो बड़े दयालु है, कि नहीं? और प्रभा दो जगह पे तीसरे अध्याय का श्लोक आता है भगवद गीता में और तेरह अध्याय के श्लोक में बताते हैं, फिर तीसरे अध्याय के उसके अंदर जब ये आता है श्लोक न बुद्धि भेद जनक ज्ञान, कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तात्पर्य में लिखते हैं लेकिन भगवान के भक्त मर्सीफुल होते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है हिला करके जगा करके बोलते नहीं भगवान की भक्ति करो, है कि नहीं? कर्म वगैरह छोड़ करके। तो जो है कृष्ण के भक्त या मेरे भाव भक्त चैतन्य महाप्रभु से एक स्टेप थोड़ा ज्यादा कृपालु है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जूनियर हरिदास, छोटा हरिदास, तो उनसे थोड़ा एक भूल हो गया था महाप्रभु, लेकिन उस भूल से उनको अभंडन कर दिया, बोले नहीं आप तो जाओ अभी यहाँ से, और आप हैरान हो जाएंगे वो लीला अगर पढ़ेंगे तो महाप्रभु के पास रोज भक्त आते थे और बाहर आके बड़ा प्रार्थना करते थे महाप्रभु अपन स्वीकार कर लो। तो महाप्रभु यही बोलते थे, एक दो बार बोला नहीं वो बदमाश है, उसने गलती किया है और दोबारा मत कहना इस बात को, नहीं तो आप सबका भी त्याग कर दो, ऐसा महाप्रभु बोलते। तो फिर भक्त आए नहीं, लेकिन छोटा रहता है बोलते थे आप चिंता मत करो महाप्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बाहर से नारियल होता है बाहर में कठोर अंदर से इतना सॉफ्ट होता है, तो वैसे ही महाप्रभु का हृदय भी आप चिंता मत, तो उनको कंसोल करते थे कई बार, ऐसे कई बार दादा थोड़ा बोलते थे, लेकिन ऐसा कभी कई समय बीत गया कुछ महाप्रभु का भाव नहीं बदला, उन्होंने अपना स्टैंड बदला ही नहीं। तो एक बार महाप्रभु के जो गुरु के गुरु ब्रह्मानंद भारती उनको भेजा, तो ब्रह्मानंद भारती आए और या परमानंद पुरी उनमें से कोई एक, तो आए तो महाप्रभु का सारा सत्कार किया, और सबसे मालता इनकी आगे का कहा तो थोड़ा सत्कार करेंगे शायद टालेंगे नहीं। तो पूछा उनसे कि क्या सेवा कर सकते हैं, तो बोले एक निवेदन है बस आपसे कि थोड़ा छोटा फायदा तो स्वीकार कर लो, दोबारा अपनी सेवा में लगा लो। तो महापुत्र गोविंद को बुलाते हैं, गोविंद को बुलाए और फिर बोले गोविंद आप थोड़ा सामान पैक करो, जितना सामान है जल्दी पैक करो। और उनको नम्रत किया और बोले देखो जो है आपके आगे का पालन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जो है जगन्नाथपुरी छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ रहूँ आगे तो मंगल कर वहाँ वरिष्ठ है, ऐसा तो कर नहीं सकता, तो मैं हाल ना चले जाता हूँ वहाँ पर रहूँगा जगन्नाथपुरी नहीं रहूँ। वो बोले देखिए मेरे ठीक है आप बैठे यहाँ पे, तो वहाँ पर बड़े कठोर थे। और फिर जब वो चले गए वहाँ से भक्तों को पता लगा, फिर प्रयाग पता लगा, बाद में सब भक्तों ने देखा कैसे गंधर्व बन के चैतन्य महाप्रभु के लिए छोटा हरिदास जो है गायन करते थे, तो सब भक्तों ने देखा कि महाप्रभु अपने सेवक का कभी परित्याग नहीं करते, चाहे एक्सटर्नल धर्म का सिद्धांत पालन करने के लिए कठोरता दिख रहे हैं एक धर्म स्थापित करने के लिए, लेकिन उन्हीं के भक्त नित्यानंद प्रभु और उनका पार्षद था कालग्र सदा, जो अगले श्लोक में नित्यानंद प्रभु यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो कामना कृष्ण था उसको साथ ले जाओ कम से कम। तो मैं आपको बोला चलो ठीक है इसको ले लेता हूँ, लेकिन ये भी जब जाएंगे तो बाद में भट्टा हरिश्रियों के संगत में आ जाते हैं और भगवान के साथ रहते भी उनके पर्स सेक्रेटरी माया की ओर चले जाते हैं, तो ये भी हमको शिक्षा देने के लिए है, जब आगे भविष्य प्रसंग आएगा तो ये शिक्षा भी सब भक्त हम सीखेंगे। तो महाप्रभु उनको फाइनली जगन्नाथ में वापिस लेकर आते हैं, नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं देखो संभालो अपने आदमी को, इतना बदमाश है, मेरे साथ भेजा था इसीलिए संभाल के वापिस लेके आना मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब ये मेरे साथ नहीं रहेगा इसलिए यहाँ से लेके जाओ, है कि नहीं कि ये इतना दूषित प्रवृत्ति का है ऐसा महाप्रभु बोल के उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बड़ा रोने लगा था महाप्रभु, रिजेक्ट कर दिया आप क्या, नित्यानंद बोले चिंता मत करो कोई टेंशन की बात नहीं है, धर्म रिजेक्ट किया हमने थोड़ी रिजेक्ट किया लेकिन बोले आप धन्यवाद जाओ, और क्यों दक्षिण भारत जाने के एकमात्र महाप्रभु के सारे लीलाओं के साक्षी आप ही हो, आपको महाप्रभु ने आमंत्रण किया हमने थोड़ी किया है, आप जाओ धन्यवाद जाओ शची माता और सारे भक्तों को बताओ महाप्रभु वापिस आ गए हैं, तुरंत वो भी जगन्नाथपुरी आएंगे और उन सबको महाप्रभु की दक्षिण भारत की सारी लीलाओं को सुनाना। बोले बस और कुछ चिंता के पीछे बात नहीं है, तो नित्यानंद को रख लिया और सेवा में लगा दिया, बोले कोई महाप्रभु ने किया कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं देख लेंगे, है कि नहीं हमारा रिकमेंडेशन है महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे, अगर महाप्रभु इसे रिजेक्ट कर सकते हैं हम स्वीकार कर लेंगे, महाप्रभु करना पड़ेगा हमें थोड़ी रिजेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त यही सिद्धांत प्रभुपाद जी के जरूर देखते हैं कि वो तो महा महा महात्मा नहीं आए, तो प्रभुपाद ने संन्यास दिया था कहा 20-22-22 साल की उम्र में संन्यास दे दिया था पाश्चात्य जगत के युवकों को, तो ऐसे ही सन्यासी बालक प्रभुपाद के पास आए बोले मेरे सन्यास धर्म पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, प्रभुपाद ठीक है गृह आश्रम में चले जाओ, तो जब ये सुना तो झटका लग गया उनको, बाद में पर्सनल पर्सनल सेक्रेटरी आए बोले प्रभुपाद ऐसे कैसे आपने बोला, महाप्रभु छोटा हरिदास का वो व्याख्यान बताया कि महाप्रभु ऐसा स्टैंड लिया, फिर प्रभुपाद बड़ी नम्रता से बोले इस चैतन्य महाप्रभु इंडिपेंडेंट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही कैन डिलीवर द होल वर्ल्ड जस्ट बाय हिज विल, वो तो इच्छा करने मात्र से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं, बट आई नीड हिम फॉर प्रोपगेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस वेदर इन संन्यास आश्रम और इन गृहस्थ आश्रम, बट लेकिन मैं भगवान नहीं हूं तो मुझे व्यक्ति की आवश्यकता है प्रचार करने के अंदर, इसको केवल संन्यास के धर्म पालन करने में दिक्कत हो रही है ना, भक्ति का नियम पालन में दिक्कत थोड़ी हो रही है, तो इसीलिए प्रचार कर सकते हैं इसीलिए आप गृहस्थ आश्रम चले जाओ। हालांकि शास्त्रों में इसकी निंदा की गई है लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी जानते थे कि विदेशी भक्त है जो ऐसा नियम पालन करने में कठोरता पालन दिक्कत आएगी आएगी, फिर भी उनको स्वीकार कर लिया और सन्यासी प्रभुपाद जी ने दिया था, रिस्पॉन्सिबल कौन है अल्टीमेटली एंड प्रभुपाद है ना, लेकिन प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया तो चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार करेंगे ऐसा, लेकिन प्रभुपाद जी जो है बोलते थे यदि कोई इंडियन अगर ऐसा करता है विशेषकर तो उसे तो चैतन्य स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भारतीय है कोई विदेशी भक्त से कुछ गलती हो भी जाता है तो चैतन्य महाप्रभु जो है उसको फिर भी वो कृपाण है स्वीकार कर ले, बाद में हमें भक्तों ने सिद्धांत बताया, लेकिन भारत भूमि के अंदर चैतन्य महाप्रभु भारतीय से बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी है, इसके बाद भी वो अगर बदमाशी करेंगे तो फिर भाव में जानते हैं कि हम कपटी हैं, लेकिन वो भक्त जो हमने वो जो माता जी का हमको उदाहरण दिया था अभी आपको तुलसी वाला, तो वो बोल रहे हैं कि बचपन से देखिए उन्होंने वेजिटेरियन फूड में दो ही चीज जानती थी, एक था मूंगफली और एक मटर बस, बाकी पूरी जिंदगी भर में वेजिटेरियन कुछ खाया ही नहीं था, आप सोचिए इस प्रकार की सभ्यता में कोई जी करके जाए यदि वो भक्त बन जाए संन्यास ग्रहण कर ले तो महाप्रभु का भी हृदय बोले कोई बात नहीं कंसेशन है अलाउड है कि नहीं, तो इस प्रकार से जय श्री कृष्ण चैतन्य की जय श्री गौर प्रभुपाद की जय। इतना गौर के मंदिर।